आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये क्लास 10th के साइंस का 14th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में हमने बात की थी कि अगर हमें विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें विंड मिल्स लगानी पड़ती हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है। जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं हमारे प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड का फ्लो होता है। अगर विंड का फ्लो बहुत तेज हो रहा हो तो ऐसे में विंड के उस फ्लो को यूज कर सकते हैं हम विंडमिल के फैन को रोटेट कराने के लिए। विंडमिल का फैन अगर रोटेट होगा तो उससे भी एक डायनामो जुड़ा होता है जो कि विंडमिल के रोटेशन को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए हम लोग जो विंड है उसकी फ्लो को यूज करते हैं यानी कि विंड एनर्जी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। अब विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में हम लोगों को विंडमिल जो यूज करना पड़ता है उसके बड़े स्ट्रक्चर की वजह से, अगर हमें विंडमिल लगाना है कहीं पर तो वहां पर बहुत बड़ा स्पेस हमें चाहिए होता है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर कहीं पर आप विंड एनर्जी फार्म लगाना चाहते हैं, विंड एनर्जी फार्म ही आपको लगाना पड़ेगा अगर आप लार्ज स्केल में विंड एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को बेसिकली बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है जहां पर आपने बहुत सारे विंडमिल्स लगा रखे हो। और विंडमिल्स में भी एक विंड एनर्जी फार्म में भी आप लोगों को एक दिक्कत आती है कि अगर तेज हवा नहीं चल रही है, ऐसी हवा जो कि जिसकी स्पीड एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो अगर हवा इतनी स्पीड की नहीं है तो आपका विंड एनर्जी फार्म जो है वो उतना यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि फिर उससे कम हवा, कम स्पीड की हवा होगी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन नहीं करके देगी हमें, क्योंकि उतनी स्पीड, ज्यादा स्पीड की हवा नहीं होगी तो वो विंड मिल को ही रोटेट नहीं कर पाएगी और एनर्जी ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाएगी। दूसरा ये कि विंड एनर्जी का यूज हम साल में हर समय नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साल भर हवा चलती रहती है और तेज हवा चलती रहती है, तो उसके वक्त अगर कभी साल में ऐसे सिचुएशंस आती हैं जब तेज हवा ना चल रही हो तो उस वक्त के लिए हमें एनर्जी किस तरीके से लोगों तक पहुंचानी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंतजाम कैसे करना है, उसके बारे में भी पहले से सोच कर रख लेना होता है। और हम क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं विंड मिल्स लगाने की, विंड मिल्स जो है वो लोहे से बनाते हैं, अलग अलग चीजों से बनाते हैं, तो इसलिए इसके कंस्ट्रक्शन में भी हमें हर साल ध्यान देना पड़ता है, इसके मेंटेनेंस में ध्यान देना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन में तो एक बार अगर बना दिया गया है विंड मिल तो उसके बाद दोबारा उसे नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन मेंटेनेंस पर खर्चा करना पड़ता है हर साल। हम लोग अब पढ़ेंगे अबाउट अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बहुत पुराने जमाने से ही हम विंड एनर्जी का यूज करते आए हैं, वाटर एनर्जी का यूज करते हैं, हाइड्रो एनर्जी का, या फिर हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स यूज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनरेशन डेवलप हो रही है, एडवांसमेंट्स आ रही हैं, तो वैसे वैसे हमारी जो यूजेस हैं वो बढ़ रही हैं, तो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड ज्यादातर बढ़ रही है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में सोचना पड़ा, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल हो, उनका हम यूज कर पाए और साल के ज्यादातर समय तक हम उसको यूज कर पाए। जिनमें से सबसे अच्छा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि सूरज से आती हुई जो एनर्जी है, सूरज से मिलने वाली जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, वो साल के नियरली ज्यादातर समय तक हम लोगों को मिल सकती है। और ऐसा कहते हैं कि हमारे भारत में अगर ऐसा वक्त हो कि क्लियर स्काई है, ज्यादा अच्छी खिली धूप है, तो वैसे में एक दिन के अंदर ही 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी का हम लोग सोलर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था कि किस तरीके से हम लोग सोलर एनर्जी को यूज करके अपना काम चला सकते हैं। हम लोग सोलर कुकर बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी 14.6 आज की क्लास में करना है, पेज नंबर 249 पर है। इसमें आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो सोलर कुकर होता है, अगर आपके पास कहीं है तो आप उसको देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे और आप सोलर कुकर देखेंगे कि उसको बनाने में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, उसके अंदर जो मटेरियल्स यूज हुए हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है, और आप खुद भी एक सोलर कुकर घर पर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 249 पर आप लोगों को एक डायग्राम बना करके दिया गया है सोलर कुकर का, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से है। एक बॉक्स बनाया गया है और बॉक्स का जो ओपनिंग है वो मिरर से बनाया गया है। ये मिरर क्या करता है, मिरर पर जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सूरज की किरणें मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जो अंदर खाना का मटेरियल रखा हुआ है, जिसे आप गर्म करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर सारा का सारा सन रेज पड़ता है आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। उसके बाद आप देख सकते हो कि ग्लास शीट जो है वो आपने कुकर के नीचे, जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें आपने खाना बनाने का मटेरियल रखा हुआ है, वहां पर भी लगाया हुआ है। इससे क्या होता है कि जितना भी हीट अंदर आ जाएगा वो एस्केप नहीं कर पाएगा। जैसे मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ सनरेज और उसके बाद आपने अंदर जो खाना रखा हुआ है उसको आपने ग्लास शीट से ढका हुआ है, जो बॉक्स है उसको ग्लास शीट से ढका हुआ है, ट्रांसपेरेंट शीट से ढका हुआ है, ग्लास शीट से। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जितनी भी सूरज की किरणें अंदर गई हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि ग्लास शीट जो है उससे वो बाहर नहीं जाने पाएंगी। अब अंदर जैसे ही सारी की सारी किरणें पहुंच जाती है तो अपने अंदर का जो इन्वायरमेंट रखा हुआ है, अपने सारी की सारी वॉल्स ब्लैक कलर की करी हुई है। तो ब्लैक कलर की इसलिए करी हुई है क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है, डार्कर कलर जो होता है, वो सनरेज को ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। लाइट कलर अगर होगा तो वो सनरेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपने डार्कर कलर का वॉल बनाया हुआ है ताकि जितनी भी सनरेज आए वो मैक्सिमम अब्सॉर्ब हो जाए। ग्लास शीट इसलिए रखा है ताकि जो सनरेज आ गई हैं वो वापस बाहर नहीं जा पाए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आप लोगों को डायग्राम से समझाया गया है। आप लोग चाहो तो आप अपने घर के अंदर भी एक छोटा बना सकते हैं सोलर कुकर, जिसे आप खुद यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए होगा, आप लोगों को एक बॉक्स चाहिए होगा, और ये बॉक्स आप या तो कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई ऑलरेडी बॉक्स हो बना हुआ, आपको वो भी आप यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले तो उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जहां पर मिरर आपको दिख रहा है, मिरर का काम सिर्फ रिफ्लेक्शन करने का है, तो मिरर की जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, कोई एल्युमिनियम फॉयल भी आप यूज कर सकते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करेगा, सनरेज को रिफ्लेक्ट करेगा। सनरेज से जैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी रेज तो वो आपके खाने वाले मटेरियल पर पड़ेंगी। अब आपने भी जो खाना का मटेरियल है उसे बॉक्स के अंदर रखना है और बॉक्स को कवर कर देना है यूजिंग अ शीट। अगर आपके पास ग्लास शीट नहीं है तो आप प्लास्टिक शीट भी यूज कर सकते हैं, जो आप लोग अपनी कॉपीज को रैप करने के लिए यूज करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर प्लास्टिक शीट का भी यूज कर सकते हैं। और आप ब्लैक कलर का या तो पेंट कर दो अपने बॉक्स को अंदर से, या फिर आप कोई ब्लैक कलर का पेपर लेकर के पूरा उसको कवर कर दो अच्छे से ब्लैक कलर से, ताकि जितना भी हीट अंदर आए वो सारा का सारा अब्सॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पर इस तरीके से आप बना सकते हो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेज ये है कि सोलर एनर्जी एब्सोल्युटली फ्री है। इसको हमने, ऐसा नहीं है कि हमें उसे पहले बनाना पड़ा और फिर उसे कन्वर्ट करना पड़ा किसी और फॉर्म में। सोलर एनर्जी को हमने एज इट इज कुकर के अंदर, जो सोलर कुकर बनाया उसके अंदर सारी की सारी एनर्जी जो है हमने सिर्फ अब्सॉर्ब कराई है, और उससे हमारा जो फूड है वो कुक हो जाता है। अब अगर इसमें पूछा जाए कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो जैसा कि आपको पता है ये सोलर कुकर है, आप इसको रात के वक्त नहीं यूज कर सकते हैं। आप इसे सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं अगर सूरज की बहुत अच्छी खिली धूप है, और उस वक्त भी आप यूज नहीं कर सकते जब बारिश हो रही हो या फिर ऐसा मौसम हो जहां पर बादल बहुत ज्यादा निकले हुए हैं, तो यहाँ पर ये लिमिटेशन है। बाकी इसमें फायदे इसके बहुत सारे हैं, नुकसान सिर्फ इतना है कि आप इसको ज्यादा समय तक नहीं यूज कर सकते हैं। आप जो एनर्जी है उसे नहीं स्टोर करके नहीं रख सकते हैं कि आप उसे बाद में भी खाना पकाने के लिए यूज कर पाए, तो ये लिमिटेशन है कि हम इसे ज्यादा समय तक नहीं यूज कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन के हर वक्त हम इसे सोलर कुकर को यूज कर पाए। अब ये लिमिटेशन जो है इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोलर सेल्स बनाते हैं। सोलर सेल्स का क्या काम होता है, जो भी सोलर एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट कर देती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी और स्टोर करके रखती है। उसके बाद हम उसे चाहे तो दिन के किसी भी वक्त में यूज कर सकते हैं। क्या होगा कि धूप के समय जब बहुत खिली धूप होगी तो उस वक्त आपका एक सोलर पैनल होता है, जो कि डिजाइन इस तरीके से किया गया होता है कि उस पर मैक्सिमम सनरेज पड़े, और जितनी भी सनरेज उस पर पड़ती हैं उससे सोलर एनर्जी जो भी उसको मिलती है उस सारी एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रख लेता है। और जो रेंज है हमारे पास, जो वोल्टेज रेंज हमें मिल जाती है एक टिपिकल सोलर सेल से, वो है 0.5 to 1 volt की पोटेंशियल डिफरेंस ये बना लेता है, जिससे कि अप्रोक्सीमेटली 0.7 watt की इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर सकता है। तो इस तरीके से एक टिपिकल, एक मामूली सा सोलर सेल जो है वो भी हम लोगों को 0.7 watt की इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप 0.7 watt से ज्यादा की इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चाहते हैं, या फिर आपके पास जो अप्लायंसेज है वो इससे ज्यादा पावर की चीजों पर चलते हैं, पावर, इससे ज्यादा पावर आपको चाहिए होगा अप्लायंसेस को चलाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा सोलर सेल्स को लगाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सन रेज को वो अब्सॉर्ब करें और उसके बाद वो इंडिविजुअली 0.7 वाट प्लस 0.7 वाट इस तरीके से वो बहुत सारे पावर को इकट्ठा कर लेंगे और फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में जितनी भी अप्लायंसेस है आप उन्हें यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी देखा भी होगा, आजकल तो आप लोगों को कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, हमारे मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस जो हैं, इंस्टीट्यूट जो हैं, वो भी क्या करते हैं कि उनके यहाँ कैंपस एरिया बहुत बड़ा होता है तो वो लोग सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए सोलर पैनल्स लगा देते हैं ताकि उनके कॉलेज की या फिर इंस्टीट्यूट की मैक्सिमम वर्क जो है वो सोलर एनर्जी को यूज करके हो जाए। तो आप लोगों को, आप चाहे तो अपने टीचर्स से बोल के सोलर पैनल्स, जो बड़े बड़े पैनल्स है, उन्हें देखने जा सकते हैं या फिर अगर आपके स्कूल में है तो आप उसे देख सकते हैं। सोलर पैनल्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है वो सारी हम यूज कर पा रहे हैं यूजिंग सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स का एक एडवांटेज ये भी है कि जैसे आपने विंडमिल में देखा कि उसे रोटेट करना जरूरी होता है, वो रोटेट हो रहा है, उसमें मूविंग पार्ट्स हैं। सिमिलरली टर्बाइन जो है उसमें भी, आप डैम वगैरह जो है वहां पर भी मूविंग पार्ट्स हैं, लेकिन सोलर पैनल जो आपने बनाया है वहां पर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, आपको सिर्फ उसे स्टेबल रख देना है, उसके बाद कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा ये कि इसको मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है हम लोगों को, जो ये सोलर पैनल्स हम एक बार ही लगा देते हैं, थोड़ा बहुत हम लोगों को ध्यान देना होता है इसके ऊपर, बाकी ये साल भर काफी सेटिस्फैक्टरीली काम करते हैं और हमारे जितनी भी अप्लायंसेस इससे जुड़ी हुई हैं वो अच्छे से काम कर पाती हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको डैम का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर पानी का कोई सोर्स हो। अगर आप लोगों को विंड मिल का कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर हवाएं साल के ज्यादातर समय तक तेज चलती हों। अगर आप लोगों को सोलर पैनल लगाना है तो सोलर पैनल तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, रिमोटेस्ट एरिया में भी लगा सकते हैं क्योंकि धूप तो वहां भी आती है, तो जहां जहां पर भी धूप आती है, हिली एरियाज हो चाहे कोस्टल एरियाज हो, जिधर भी धूप आती है वहां पर सभी जगह पर सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। अब हिली एरियाज में सोलर पैनल्स लगाना ये और भी ज्यादा एडवांटेजेस हो जाता है क्योंकि हिली एरियाज में बिजली का सप्लाई करना अलग तरीके से, ट्रांसमिशन लाइंस जो वायर्स होती है उनको लेकर के वायर पहुंचाना हिली एरियाज में और फिर इलेक्ट्रिसिटी वहां के लोगों तक पहुंचाना, ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम क्या करें, अगर हिली एरियाज जहां पर हमें लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है वहां पर हम सोलर पैनल्स लगा दें और उस सोलर पैनल से लोगों के घरों तक सप्लाई दे दें तो वो ज्यादा यूजफुल हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि हमें बार बार जा करके वहां पर वायर्स की कोई जो रिपेयरमेंट है वो नहीं करनी पड़ेगी। सोलर पैनल एक बार लगा दिया तो उसमें कोई मूविंग पार्ट्स भी नहीं है, लोगों को भी थोड़ा बहुत सिखा देंगे तो वो खुद भी उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो रिमोटेस्ट एरियाज हैं हमारे कंट्रीज के वहां पर भी डेवलपमेंट का काम कर सकता है, वहां पर भी बिजली सप्लाई कर सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है। हमारे सोलर पैनल में सिलिकन यूज होता है, सिलिकन बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में नेचर में मौजूद होता है और उसमें से भी स्पेशल ग्रेड का जो सिलिकन होता है उसको यूज किया जाता है हमारे सेल्स के अंदर, सोलर पैनल्स के अंदर, जो कि बहुत वो उसकी अमाउंट थोड़ी लिमिटेड होती है, तो हम ऐसा इसको लेकिन यूज किया जा सकता है क्योंकि फिर भी कंपैरेटिवली सिलिकन जो है वो हम लोगों को मिल जाता है नेचर में। जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत ही चीप होते हैं, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इनमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। सिलिकन, अगर आप अच्छी क्वालिटी का सिलिकन, स्पेशल ग्रेड सिलिकन यूज कर रहे हैं, वो सोलर सेल में यूज कर रहे हैं, तो उससे आपकी सोलर सेल थोड़ी महंगी हो जाती है। साथ में हम सिल्वर भी यूज करते हैं कनेक्शन कराने के लिए, सेल्स के बीच में सोलर सेल्स के कनेक्शन, आपस में कनेक्शन कराने के लिए हम सिल्वर यूज करते हैं, तो सिल्वर भी काफी महंगा मटेरियल होता है, तो इससे क्या होता है कि आपके सोलर पैनल का कॉस्ट और भी बढ़ जाता है। लेकिन कॉस्ट को ज्यादा, इसकी जो इतनी हाई कॉस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए भी इससे जो जो फायदे हैं अगर उन्हें भी ध्यान में रखें तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग आज की डेट में यूज करते हैं सोलर पैनल्स को। मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे देश में भी बहुत सारे हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं कॉलेजेस वगैरह में, वहां पर भी बड़े बड़े एरियाज में सोलर पैनल्स लगाते हैं ताकि उसका यूज कर पाए। काफी सारे जो स्कूल्स है जो रिमोट एरियाज में काम करते हैं उन लोगों को भी इस बारे में जैसे जैसे पता लगा है तो वो भी अपने स्कूल्स की छतों पर रूफ टॉप पर वो लोग भी सोलर पैनल्स लगा देते हैं ताकि उनके स्कूल के बच्चों को भी कंप्यूटर चाहे इस तरीके की स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो है वो यूज कर पाए, क्योंकि सोलर पैनल से एनर्जी जो क्रिएट हो रही है उसका वो यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो इसकी हाई कॉस्ट जो है वो हमें एक बार बियर करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ध्यान में रख के बाकी सारी चीजें भी लोग आज भी सोलर पैनल्स जो है उसकी हाई कॉस्ट के बावजूद भी यूज करते हैं। जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का क्या काम है, इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ये देते हैं। काफी सारे सैटेलाइट्स जो है वो दूसरे प्लैनेट्स की खबर हम लोगों को देते हैं, दूसरे प्लैनेट्स की पिक्चर्स लेकर के हम लोग को देते हैं। तो जैसे कि अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल यह है मार्स ऑर्बिटर, जो मार्स की पिक्चर्स वगैरह ला के देता है, मार्स की हम लोगों को इमेजेस ला के देखता है। तो मार्स ऑर्बिटर मान लो कि सैटेलाइट हमने ले जा करके लॉन्च कर दिया, अब वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी भी तो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो आप कोई वायर लगा करके नहीं पूरा कर सकते। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि सैटेलाइट को आपने कोई बहुत ज्यादा पावर पहले से ही स्टोर करा के रख दी है तो वो उसे यूज कर पाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों के ये सैटेलाइट्स होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इनको हम लोग सोलर पैनल लगा देते हैं ताकि ये जो भी सनरेज इस पर पड़ रही हैं, जो सोलर एनर्जी इसको मिल रही है उसका यूज करके ये खुद को मेंटेन करता है और खुद को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी ये सोलर एनर्जी से प्राप्त करता है। तो हम लोग जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनके अंदर भी सोलर पैनल्स जो है लगाते हैं। रिमोट एरियाज में रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम्स जो हैं या फिर टीवी रिले स्टेशंस जो हैं वो रिमोट लोकेशंस में वो भी सोलर सेल्स यूज करती हैं, सोलर सेल पैनल्स यूज करते हैं। और क्योंकि वहां पर आपको बताया जैसे गया है कि रिमोट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू सप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां पर हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने ही पड़ते हैं। तो उनमें से सबसे अच्छा सोर्स जो है वो सोलर पैनल्स है। तो वहां पर रेडियोज के काम कराने के लिए रेडियो का वायरलेस ट्रांसमिशन जो कराना होता है तो उस जगह पर भी हम लोग यहाँ पर सोलर पैनल यूज कर लेते हैं। टीवी का रिले स्टेशन हो गया, वहां पर भी हम लोग सोलर पैनल्स यूज कर लेते हैं। साथ ही में आप लोगों ने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स जो है, ट्रैफिक सिग्नल्स में दिन के वक्त जो लाइट जलती है या फिर जो भी रेड लाइट जल रही है, तो ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो सोलर पैनल्स का यूज करके वहां पर वो यूज की जाती है। तो क्या करते हैं कि दिन के वक्त ट्रैफिक सिग्नल में सिर्फ सिग्नल के लिए चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी, बाकी जो रोड लाइट्स हैं उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, क्योंकि दिन में तो रोशनी खूब होती है। अब दिन में जितनी भी रोशनी सारी मिलती है, हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी जो रोड लाइट्स हैं उनके हेड पर सोलर पैनल्स लगाई हुई हैं। जो आजकल रोड्स बन रही हैं वहां पर ये बात ध्यान में रखी जा रही है कि जो रोड लाइट्स हैं उनके हेड पर सोलर पैनल्स लगाते हैं। वो सोलर पैनल्स दिन के वक्त जितनी भी रोशनी मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है, वो सारा का सारा वो स्टोर कर लेते हैं और अपनी बैटरी को वो चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद स्टोर की हुई जो एनर्जी है उसको वो रात में यूज करते हैं और रोड लाइट्स जलती रहती हैं रात में। तो इस तरीके से हमारा बहुत सारा जो एनर्जी है वो बचता है सोलर एनर्जी को यूज करने से, क्योंकि यहाँ पर हमें अलग से दूसरी एनर्जी ला करके नहीं देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ रही है। हमारे जो रोड लाइट्स हैं वो खुद ही सोलर एनर्जी यूज करके काम चला लेते हैं। तो इस तरीके से ट्रैफिक की जो जगह है वहां पर भी यूज करते हैं। कई सारे कैलकुलेटर्स में भी लगे होते हैं सोलर पैनल्स, कई सारे खिलौने भी आजकल आते हैं जिसमें छोटे छोटे सोलर पैनल्स लगे होते हैं, और ये सोलर पैनल्स भी काम कर सकते हैं अगर आप इन्हें धूप में रख दें। तो इनके ऊपर जैसे ही सोलर एनर्जी इनको मिलेगी तो ये चार्ज हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी भी सोलर पैनल्स एक इंडिविजुअल घर के लिए बात की जाए कि एक घर के अंदर आप यूज कर रहे हैं, तो वो लोग यूज करने से अभी भी कतराते हैं क्योंकि थोड़ा महंगा होता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये काफी यूजफुल भी होता है। उसके बाद अलग दूसरी एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना है, एनर्जी फ्रॉम द सी, समुद्र से हम लोगों को किस तरीके से एनर्जी मिलती है। सबसे पहले एनर्जी का नाम आपको बोला है टाइडल एनर्जी, टाइड से जो हमें एनर्जी मिलती है वो एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो ग्रेविटेशनल पुल मून को मिलता है, चांद को जो धरती की वजह से ग्रेविटेशनल पुल मिलता है ऑन स्पिनिंग अर्थ, घूमता हुआ जो अर्थ है वो हमारे मून को ग्रेविटेशनल पुल देता है, जिसकी वजह से हमारे समुद्र का जो पानी का लेवल है वो कभी तो बढ़ जाता है, कभी तो वो घट जाता है, कभी इट राइजेस कभी इट फॉल्स। तो इसी का यूज करते हैं यहाँ पर, और जैसे ही लेवल राइज करेगा उसके बाद वो हाई लेवल फिर गिरेगा, तो जैसे ही वो गिरेगा तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर एक छोटा डैम लगा देते हैं ताकि जैसे ही हाई लेवल नीचे गिरने से पहले वो टर्बाइन पर गिरे और टर्बाइन रोटेट करे, उससे क्या होगा कि रोटेट करने से उसमें मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे ही लेवल राइज करता है तो इसे हम हाई टाइड कहते हैं, जब लेवल फॉल करता है तो उसे लो टाइड कहते हैं। अगर आप कभी किसी समुद्र वाले इलाके में गए होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कभी कभी दिन के जो सुबह के समय होता है तो जो टाइड का लेवल होता है वो कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है, शाम ढलती जाती है, वैसे वैसे टाइड का लेवल बढ़ जाता है। और ये जो है ये एक नेचुरल फिनोमेना है, तो इसका यहाँ पर यूज किया जाता है, इसे टाइडल एनर्जी कहते हैं। दूसरी एनर्जी जो समुद्र से मिल सकती है वो है वेव एनर्जी। आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र में कभी कभी बहुत तेज तेज तरंगे उठती हैं, तो ये तेज तरंगे बेसिकली क्या है, इसके हमारे समुद्र के अंदर एनर्जी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही तेज तरंगे आती है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, बहुत तेजी से ये बह करके आती है, इसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं और हम वहां पर भी छोटे डैम्स बनाते हैं। ये तेजी से बहता हुआ जो वेव्स आती हैं, जो तरंगे उठती हैं समुद्र में, ये क्या करती हैं, टर्बाइन को रोटेट करती हैं। जैसे ही ये टर्बाइन को रोटेट करती हैं तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर आप पूछें कि ये वेव्स कहाँ से आती हैं, तो बेसिकली क्योंकि समुद्र के इलाके में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो उसी वजह से पानी में, समुद्र के पानी में वेव्स जनरेट होती हैं, इसी को वेव एनर्जी कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तीसरा यहाँ पर जो समुद्र से एनर्जी हमें मिलता है वो है ओशियन थर्मल एनर्जी। हमारी जो ओशियन है या फिर जो भी समुद्र है, तो समुद्र का ऊपर वाला सरफेस जो होता है, पानी का ऊपर वाला सरफेस, इसके ऊपर धूप पड़ रही है, डायरेक्टली पड़ रही है, तो ये ऊपर वाला सरफेस गर्म हो जाता है। लेकिन उसके अगर थोड़ा नीचे लेवल की बात की जाए तो उसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ने की वजह से वो रिलेटिवली कोल्ड होता है, वो थोड़ा सा ठंडा पानी होता है। सरफेस के ऊपर वाला गर्म होता है, सरफेस के थोड़ा सा बिलो जो है वो ठंडा होता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस जो है, टेम्परेचर का डिफरेंस जो है, इसी से क्या करते हैं, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है इसको यूज करके हम लोग एनर्जी बनाते हैं। और ऑलरेडी जो वहां पर एनर्जी है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, वो थर्मल एनर्जी है। इस थर्मल एनर्जी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। अब ये कैसे करते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स, इनको बनाते हैं, जैसे डैम्स बनाना या फिर टर्बाइन्स का वहां पर फॉर्मेशन करना। तो इस तरीके से हम लोग ओशियन में ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स ये बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो सबसे ऊपर वाले जो सरफेस है, पानी का सरफेस जो है वो तो गर्म है, वो क्या करेगा, उसके नीचे जो पानी है कम से कम 2 किलोमीटर तक का जो गहराई है, उतना नीचे तक टेम्परेचर कम से कम बहुत ठंडा होता है। और ऊपर सरफेस के ऊपर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस भी तापमान है, और पानी के नीचे कम से कम 2 किलोमीटर नीचे तक ठंडा तापमान है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस भी कम आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जो ऊपर वाला पानी है जो गर्म है, ये क्या करता है, इसकी गर्मी को हम यूज करते हैं एक मटेरियल को भाप में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये मटेरियल जो हम यूज करते हैं, इसकी जो वोलेटाइल होने की कैपेसिटी होनी चाहिए ये ज्यादा होनी चाहिए। हम लोग अमोनिया यूज करते हैं, लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं, और जो ये टेम्परेचर है सरफेस के ऊपर का टेम्परेचर, पानी के सरफेस के ऊपर का टेम्परेचर जो 20 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा भी हो तो चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये टेम्परेचर हम यूज कर लेते हैं और हमारे लिक्विड अमोनिया को ये भाप में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ही भाप में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड अमोनिया, तो हम इस भाप को टर्बाइन के ऊपर फोकस करते हैं। टर्बाइन भाप की गर्मी की वजह से रोटेट करता है, रोटेट होने की वजह से वहां पर मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो अगर पानी के जो ऊपर का सरफेस है, मान लो उसका 20 डिग्री तापमान है और पानी के बिल्कुल नीचे का सरफेस जो है वो एकदम ही ठंडा है, तो हमें कम से कम जो टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन या उससे ज्यादा चाहिए। तो इतने पे भी हमारा काम चल जाएगा, यहाँ पर हम काफी अच्छे अमाउंट में एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। तो ये एनर्जी जो हमें मिली है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ऊपर के पानी के ऊपर की सतह और नीचे की सतह में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इससे जो एनर्जी मिली है इसे ओशियन थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब हमने जो लिक्विड अमोनिया यूज किया है, अगर हम चाहते हैं कि इसे हमें बार बार यूज करते रहें, तो हमने लिक्विड अमोनिया को गर्म सतह से गर्म टेम्परेचर को यूज करके पहले भाप में कन्वर्ट किया। अब जो नीचे वाला सतह है उसको यूज करके हम वापस से अमोनिया को ठंडा कर देते हैं, क्योंकि नीचे वाला पानी की सतह के नीचे का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है, तो ठंडे टेम्परेचर को यूज करके हम वापस से अमोनिया को ठंडा कर देते हैं, तो वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको वापस से गर्म करते हैं, भाप में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी जनरेट कराते हैं। तो इस तरीके से हम सेम का सेम जो हमने लिक्विड अमोनिया लिया हुआ है उसी को बार बार यूज करके ओशन थर्मल एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी टाइड से जो एनर्जी हम लोग को मिलती है और थर्मल एनर्जी जो मिलती है और वेव एनर्जी जो मिलती है, सारी की सारी जो समुद्र से एनर्जी मिलती है ये काफी बेनिफिशियल है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है कि इसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करा जाए, इतनी ज्यादा नहीं होती है कि इसी का यूज करके आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाती है तो वो काफी होती है। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी जो हमें पढ़नी है वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियो वर्ड जो होता है धरती से रिलेटेड होता है, अर्थ से रिलेटेड होता है, थर्मल जो वर्ड है ये हीट से रिलेटेड है, और एनर्जी तो यहाँ पर धरती की गर्मी से रिलेटेड एनर्जी जो है वो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से धरती की जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं, धरती के अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं उसकी वजह से कुछ जो बदलाव आते हैं, उससे क्या होता है कि मॉल्टन रॉक्स जो है जो अंदर है हमारी धरती के अंदर, जितने भी मॉल्टन रॉक्स है पिघले हुए जो रॉक्स है वो अर्थ क्रस्ट में काफी डीपर होते हैं, धरती के काफी अंदर की ओर होते हैं जो ये मॉल्टन रॉक्स है, क्योंकि आपको पता धरती के बहुत अंदर अगर आप जाओगे तो टेम्परेचर बहुत हाई मिलता है, तो यहाँ पर मॉल्टन रॉक्स जो होते हैं वो अंदर बहुत गर्म होते हैं। अब धरती में कुछ कुछ जो एक्टिविटीज होती है, मूवमेंट्स अंदर अंदर जो होती होती है ये मॉल्टन रॉक्स की, ये क्या करती है, इसकी वजह से इनको एक अपवर्ड पुश मिलता है और ये ऊपर को आ जाती है। जो भी मॉल्टन रॉक्स है ये धीरे धीरे करके धरती के ऊपर वाले अर्थ क्रस्ट जो है ऊपर वाले सरफेस पर आने लगती है, तो ऊपर आते के साथ जो जगह जिन जगहों पर ये ट्रैप हो जाती हैं अपवर्ड धरती के ऊपर वाली सतह वाली जगह पर जहां पर आकर ये स्टोर हो जाती हैं उनको हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं, उन रीजन्स को हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं। अब क्योंकि ये जो हॉट स्पॉट्स हैं ये कहाँ से आई हैं, ये मॉल्टन रॉक्स हैं बेसिकली, तो इनका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, और इसके साथ जो भी नीचे का अंडरग्राउंड वाटर है जब इसके साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो वो पानी गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पर हम लोगों को कई बारी स्टीम फॉर्मेशन दिखती है, कुछ कुछ धरती के कुछ कुछ जगहों पर आप लोगों को आपने वो पानी नहीं उबाला है लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर पानी गर्म मिलता है। कुछ कुछ जगहों पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी कि धरती की कुछ कुछ जगहों पर सर्टन लोकेशंस में आपको पानी जो होता है उस एरिया का गर्म मिलता है, इतना गर्म मिलता है कि उससे भाप निकलती रहती है, इन जगहों को हम क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। तो आप लोग चाहे तो आप इंटरनेट में हॉट स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स बेसिकली क्या है, धरती के अंदर का जो मॉल्टन लावा है वो धरती के क्रस्ट के काफी ऊपर आ गया है, अब जैसे ही ये ऊपर आ गया है तो हमारी अंडरग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आता है और अंडरग्राउंड वाटर को ये बहुत गर्म कर देता है, इतना गर्म कर देता है कि पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, वही स्टीम हम लोगों को दिखती है और इन जगहों को हम हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। ये जो भाप बन चुका है इस भाप को हम यूज करते हैं टर्बाइन को रोटेट कराने के लिए, टर्बाइन रोटेट होगा तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, अगर मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी तो उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हॉट स्प्रिंग्स का जो भाप है उसको यूज कर लेते हैं हम ताकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना पाए। तो इस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी जो है उसको भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो जियोथर्मल एनर्जी है इसका इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमारी कंट्री में नहीं होता है क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सारी हॉट स्प्रिंग्स नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनके यहाँ कुछ कुछ जगहों पर ये लोग यूज करते हैं और इन लोगों ने भी नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बना रखे हैं जियोथर्मल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कराने के लिए, इन लोगों ने पावर प्लांट्स बना रखे हैं जहां जहां पर इनके पास ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर हॉट स्प्रिंग्स ज्यादा है, तो इन लोगों ने इस तरीके से पावर प्लांट्स बना रखे हैं टू यूज दैट जियोथर्मल एनर्जी। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि उतना ज्यादा फायदा नहीं होता है, कमर्शियली अगर कहा जाए तो उतना ज्यादा फायदा नहीं होता है, हर जगह नहीं होता है, लेकिन फिर भी अमेरिका में और न्यूजीलैंड में पावर प्लांट्स बना रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। आज की डेट में सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। जब यहाँ पर हम लोग किसी नेचुरल सोर्स से एनर्जी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम केमिकल रिएक्शन करा के न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए कहीं कहीं पर अगर हम ये कहें कि न्यूक्लियर एनर्जी से फायदा हमें हो रहा है तो इसका नुकसान इतना ज्यादा है कि पूरी जो धरती पर लाइफ है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, हमारी कंट्रोल में नहीं रह जाते। अगर ये रिएक्शंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसके काफी सारे इंसिडेंट्स देखे भी गए हैं। रशिया में कई बार ऐसा हो गया है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हुई उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और उससे उनके लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, वहां की कई जिंदगियां तबाह हो गई। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं इनसे जनरेट होती हुई एनर्जी में इतनी पावर है कि ये बहुत सारे लोगों की लाइफ तबाह कर सकती है। आप लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी इंसिडेंट के बारे में भी सुना होगा, किस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी जापान में जो जगह है, अमेरिका ने इनपे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराई थी, जिसकी वजह से आज भी जो लोग वहां पर जन्म लेते हैं उनके किसी के हाथ में डिफेक्ट होता है, किसी के पैर में डिफेक्ट होता है, किसी की बॉडी डिफेक्टिव होती है। और वहां उस वक्त जब बॉम्ब्स गिराई गई थी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तो उससे बहुत ज्यादा हाई लेवल की डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है जिसके बारे में आजकल हर कंट्री इसके ऊपर फोकस कर रही है, वेपन्स बनाने के साथ साथ एनर्जी के क्रिएशन के लिए भी। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपने जो आज पढ़ा है आपको उसे रिवाइज कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर से पूछना है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।